আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বা'দ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াব্লুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা ওয়া হুয়াল আযীযুল গফুর সাদাকাল্লাহুল আযীম। اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ ملک وچ سے سٹارٹ کرتے ہیں which is the beginning of the 29th para as well اس کے اندر آرڈر کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کی 67th نمبر پہ سورت بنتی ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے دس از دا 77th سورہ آف دا قرآن۔ اس میں ٹوٹل 30 آیات ہیں اور دو رکوع ہیں اور اس بالکل ہم نے دیکھا تبارک الذی بیدہ الملک، ملک کہتے ہیں سلطنت کو، بادشاہت کو، تو بیدہ الملک اس کے ہاتھوں میں ملک، ملکیت ہے، بادشاہت ہے، یہ اللہ کے بارے میں تذکرہ بالکل فرسٹ آیت میں ملتا ہے، اسی لیے سے سورہ ملک کہا جاتا ہے۔ یہ مکی سورت ہے ظاہر ہے اور اس کی فضیلت تو بہت ساری احادیث اور روایتوں میں ملتی ہے، تو اس لیے اس پہ تو پورا ایک لیکچر ان اٹ سیلف ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہاں ہمارا جو کور فوکس ہے وچ از جسٹ دا دور آف دا قرآن ایٹ دس پوائنٹ، تو اسی پہ وی شوڈ ریسٹرکٹ ٹو دیٹ اینڈ ان فیوچر ان شاء اللہ کبھی نہ کبھی ویل کنٹینیو اینڈ گو ان ٹو ٹرائی ٹو گو ان ٹو دا ڈیٹیلز آف دس سورہ۔ اینی ہاؤ ابھی اتنا از انف کہ ایک ہم حدیث اگر غور کریں صرف جو کہ نسائی میں، ابو داؤد میں، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ، یعنی چار میجر جو صحاح ستہ کی بکس ہیں اس کے اندر جو ایک حدیث ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کریم میں 30 آیات ہیں جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہیں، چنانچہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی از ریفرنگ ٹو سورہ ملک، یہ جو اس میں 30 آیات ہیں، یہ پڑھنے سے عذاب قبر سے بھی نجات ملتی ہے اور تمام مشکلات سے آسانی انشاءاللہ ہوتی ہے۔ باقی ادر دین دیٹ اس صورت میں اگر دیکھیں تو تین کی پوائنٹس ہمیں ملتے ہیں، جو فرسٹ دیکھیں تو بہت ساری ڈفرینٹ آیات میں، فرسٹ پھر سیکنڈ آیت میں ہی دیکھ لیا، یا 13 پہ، 14، 15، 19، 21، ان سب آیات میں ہمیں اللہ کے جو زمین اور آسمان اور اس کی جو بادشاہت ہے، کیونکہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، اس کا ہے، اس کے ہاتھوں میں، اس کی ہی کنٹرولز ایوری تھنگ، تو اسی کے بارے میں کہ ہی ہیز آل دا علم، ہر چیز کی ہی ہیز دا نالج، اور اینڈ ہی از بیہائنڈ واٹ ہیپنز ان دا اسکائیز اینڈ ان دا اوشنز اینڈ آن دا روڈز اینڈ آن دا پارکس، یا جو بھی پرندے ہیں، انسان ہیں، کوئی جانور ہے، کوئی اس کی مرضی کے خلاف نہیں چلتا۔ تو یہ اللہ کی ساری نشانیاں ان سب مختلف آیات میں ہمیں ایک تو ملتی ہیں، اور ایک اور کی پوائنٹ اس صورت میں جو ملتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پھر ظاہر ہے وحدانیت، اور جو اللہ کی سپریمیسی ہے اس کے اوپر دلائل آیت نمبر 3 سے 5 تک ہی اگر ہم دیکھ لیں، تو جو آسمان ہے اس کو روف یعنی کہ چھت بنانا، یا پھر سٹارز کی اگین بات آتی ہے، ستاروں کو جیسے لائٹ کے طور پہ، یا زمین کو ایک سٹیبل فرش سارٹ آف بنایا، یا واٹر ہمارے لیے بہتے ہوئے جو ریورز ہیں، چشمے ہیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، ان کی بات ملتی ہے۔ اور تھرڈ ایک پوائنٹ جو ہمیں اس میں ملتا ہے، جو قرآن پاک کو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام خاص طور سے یہاں پہ ذکر ہوتا ہے، تقاد تمیز من الغیظ کلما فیہا فوج سألم خزنت ولم یأتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، یہ بات ان سے پوچھی جائے گی، قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہمارے پاس ایک بندہ آیا تھا دعوت دینے کے لیے، اس نے کہا تھا کہ یہ حق ہے، اس بات کو مان جاؤ، یہ کر لو، لیکن ہم کہتے تھے نہیں، تم ایسی ہمیں، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، ہمیں یا آج کے دور میں یہ کہا جائے گا، لیکن خیر اس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، تم ساحر ہو، جادوگر ہو، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، جھٹلاتے تھے میسج کو، اور ظاہر ہے ان کا انجام یہاں پہ۔ تو اس کی وجہ جو اینڈ میں ظاہر ہے بالکل، ہم پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فائنلی فلما آیت نمبر 27 میں، فلما راؤ زلفتن سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، جب اس آگ میں انہیں ڈالا جائے گا تو پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تو यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सूरह मुल्क के रफली हमने की पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब हम सूरह कलम को अगर नोट करते हैं नेक्स्ट ऑनवर्ड्स, तो ये ऑर्डर के एतबार से 68 सूरत है और नाजिल होने के एतबार से कुरान पाक की सेकंड सूरत बनती है। इसमें 52 आयात और 2 रुकू हैं और जाहिर है बिल्कुल फर्स्ट नून वल कलम व मा यस्तुरून, ये कस्में जो हमें मिलती हैं अल्लाह सुबहान व तआला खाते हुए इस कुरान अपने कलाम के ज़रिए से, तो इसी कलम का लफ्ज़ आने की वजह से ही इसे सूरह कलम कहा जाता है। और इसके बारे में अगर एक रिवायत है हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की, जो फरमाते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ने पैदा फरमाई वो कलम था, यही पेन था। इसे पैदा करने के बाद फरमाया लिखो, यू नो राइट, और द पेन आस्क्स अल्लाह सुबहान आस्क्स अल्लाह सुबहान व तआला कि मैं क्या लिखूं, व्हाट शुड आई राइट, ही सेड तकदीर, यू नो फेट, ये लिखो। और तकदीर लिखने के बाद जो कुछ क़यामत तक होगा वो सब कलम ने लिख दिया, जाहिर है। तो फिर अल्लाह ने फर्स्ट जो है हरूफ मुकतात में से लाए नून, असल में दिस इज़ रेफरिंग टू इंक, यानी दवात जो होती थी। तो ये कमाल है कुरान पाक का, अल्लाह सुबहानहू तआला ने उस वक्त ये कुरान और कलम और यू नो ख़त व किताबत एंड राइटिंग एंड लिटरेचर और इसकी जो एक तालीम दी, एक एजुकेशन दी, उस वक्त के माहौल में तो ये चीज़ें थी नहीं, कोई चीज़ प्रिजर्व तो थी नहीं। जो उस वक्त के हिस्टोरिकल हमें बैकग्राउंड हिस्टोरियंस को मिलते भी हैं, वो रोमन्स के और जो कैसर कैसरा जो पर्जियन एम्पायर थी और रोमन एम्पायर एक्सेट्रा, दोनों चाहे ऑर्थोडॉक्स हो या कैथलिक्स हों, लेकिन एनी हाउ वो लोग सबकी उनकी एक बैकग्राउंड और सब इन राइटिंग महफूज होता था। और इस अरब कल्चर में जंगजू और कबाइल और इस तरह के लोग थे कि ऐसा कुछ होता ही नहीं था, लेकिन उस वक्त भी कुरान ने इन्हें तरगीब दी। आगे हम अगर गौर करें तो इस सूरत में हमें तीन की पॉइंट्स समझ में आते हैं। शुरू में इन आयतों के अंदर दनमान तब नमती रब का भी मजनून व नकल अजरन गैर ममनून, अल्लाह सुबहान व ताला बेसिकली हजूर अलैहिस्सलाम के जो अखलाक हैं और मनाकिब हैं, जो उनके उनका स्टैचर है, उसकी एक तारीफ़ करते हुए और उनके डिफेंस में कि ये कोई मजनून ही है, ये तो उनके इनके लिए बहुत अच्छा अजर है, और उनके अखलाक अजीम की तारीफ़ कर रहे हैं। और ज़ाहिर है ये एक हदीस है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से, मुस्लिम शरीफ में है, अबू दाऊद में है, नसाई में है, तीन मेजर बुक्स ऑफ जो सहासता है उनके अंदर ये हदीस मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक के बारे में उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि आपका खुल्क कुरान है, यानी जो कुरान इटसेल्फ इज़ व्हाट नबी अलैहिस्सलाम अखलाक वॉज, तो किसी ने उनके अखलाक समझने हो तो वो इसी कुरान का तस्सिया कर ले, इसे पढ़ ले, इसे समझ ले। और आगे आयत नंबर 10 से ऑनवर्ड्स जो 14 तक हम देखते हैं कि वलीद बिन मुगैरा के बारे में मुफस्सरीन लिखते हैं कि आयतें हैं, ये एक कुरैश का सरदार था जिसके बारे में ये आयतें नाजिल हुई। तो ये जाहिर है इनका बड़ा वो नाफरमान किस्म का आदमी था। तो खैर इसके बाद आगे हम अगर देखें तो असाबुल जुन्ना, यानी कि एक आयत नंबर ये समझे हम 17 से लेकर 33 तक अगर हम देखते हैं, इनका एक किस्सा आता है। ये सेकंड टॉपिक, ये एक इंटरेस्टिंग टू सी है, जो कि पता नहीं इन्ना बलव नाम कमा वाला उना असहाबल जन्ना इज़ अकसमू लयसरिफुन्नहा मुसबहीन। ये एक बाग था जो यमन में गलबन, जिसका अरबों में एक किस्सा बहुत मशहूर था कि हिज ओनर ही यूज़ टू डोनेट अ लॉट, वो जो गरीब लोग होते थे और पुअर पीपल, उनको बहुत ज़्यादा डोनेशंस करता था इस बाग की कमाई से। फिर जब ये फौत हो गया तो इसकी औलाद वारिस बन गई जा रही, और उन्होंने किसी तरह से, उनको ये अच्छी नहीं लगी कि हम इतना सारा दोबारा उसी तरह से इन गरीबों मस्कीनों में बांटते रहें, तो उन्होंने जान छुड़ानी चाहिए और सारा माल किसी तरह बेच बूझ के भागना चाह, तो अल्लाह ने वो बाग ही तबाह कर दिया। तो ख़ास तौर से उनका जिक्र असहाबुल जन्ना का आता है यहाँ पर। और फिर आगे हम देखते हैं तो आयत नंबर 34 के ऊपर कज़ालिक अलअज़ाब इन्नलिलमुत्तकीन इंद रब्बिहिम जन्नात नईम, फिर मुत्तकीन का जिक्र आता है कि उनके लिए जन्नात नईम है, यानी कि पाक जो ज़ाहिर जन्नतों की वादियाँ हैं एंड उसकी सारी ब्यूटी एंड एवरीथिंग। और फिर आगे एक वर्स नंबर 42 इज़ इंटरेस्टिंग कि उन लोगों के बारे में जो मयुक शफ अनसा के वाउन सजूदी फ़लाह यस्तियों, जब ये लोग इन लोगों से दुनिया में, क्योंकि कहा गया नमाज़ पढ़ो सजदा करो और ये नहीं करते थे, तो ख़ास तौर से यहाँ पे अल्लाह ने कहा कि जिस दिन ये पिंडली खोल दी जाएगी, जिससे मतलब यह है कि उलमा लिखते हैं कि जो क़्यामत जब उसकी हौलनाकियाँ फाइनली जो उसके मेजर साइंस हैं वो सामने आ जाएंगे, तो और जब ये देखेंगे उस टेरर को, तो उस वक्त इनके सजदे काम नहीं आएंगे, क्योंकि दुनिया में इन्हें इख्तियार दिया गया था और दुनिया में ये लोग उनसे जान छुड़ाते रहे। तो उनका एक जिक्र हमें यहाँ पे मिलता है। उसके आगे फिर हम सूरह अल हाक का पे अगर देखें, तो ये ऑर्डर के एतबार से 69 सूरत है और नाजिल होने के एतबार से कुरान पाक की 78 नंबर पे सूरत है। इसमें 52 आयात और 2 रुकू हैं। ये भी मक्की सूरत है और हाक का अरबी ज़बान में इसका मतलब है साबित होने वाली, क्योंकि जो क़यामत का दिन है वो साबित होने वाला है, तो इसीलिए क़यामत के एक नामों में से हाक का जो है, दिस इज़ वन ऑफ़ द नेम्स ऑफ द क़यामा, कि वो एक दिन साबित होकर रहेगी। तो उसी को अल्लाह ने यहाँ पे प्रोमिनेंस एक सिग्निफिकेंस देने के लिए इसका अल हाका से स्टार्ट किया, और इसीलिए सूरत का नाम भी अल हाका ही है। टोटल आयत नंबर 12 तक अगर हम देखते हैं तो वही क़यामत के जो हौलनाक मंजर हैं, ज़ाहिर है ऑफकोर्स उनका सारा बयान मिलता है, और फिर कौम आद समूद और इनके वाक़यात जिन पे अज़ाब अल्लाह का नाजिल हुआ, और फिर आगे अगर हम ख़ास तौर से देखते हैं उससे ज़रा पहले के वाक़यात का जिक्र आयत नंबर 14 से ऑनवर्ड 17 तक मिलता है, जो उस वक्त जब क़यामत आने वाली है उससे पहले समझे कि सूर जब फूंका जाएगा और जब ज़मीन रेजा रेजा होना शुरू होगी और ये फरिश्ते आएंगे और इंसानों का अहाता किए होंगे, यानी इन्हें सरेंडर किए हुए होंगे, करवाया हुआ होगा इन्हें, तो उस वक्त के मनाजिर कुछ हमें यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताए। और फिर ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जब इनको पेश किया जाएगा इंसानों को, आयत नंबर 18 में टू बी प्रिसाइज़, यौम आइज़ यू तो रजून ला तख़फ़ा मिनकुम खाफिया फम्मा मन उतिया किताब अभी अमीनी फ़यकुल हा उमुक करो किताबिया। ये यानी वो लोग जो बाज़ ज़ाहिर है इसमें नेक लोगों की बात चलती है और बाज़ बुरे लोगों की, उनका जिसका राइट हाथ में ज़ाहिर है दिया जाएगा अमाल नामा ही विल बी सेफ, और जिसका लेफ्ट ना हाथ में दिया जाएगा ऑफकोर्स वो ही विल बी इन प्रॉब्लम। तो इसी के मनाजिर का यहाँ पे अल्लाह ने पहले नेकों का जिक्र किया और फिर बुरे लोगों का, कि जिसका होगा उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा फिर, और जो नेक होंगे उन्हें जन्नत में, इसी तरह साइमल्टेनियसली दोनों का जो अंजाम बार बार कुरान में रिपीट होता है। तो इसी का फोकस ज़्यादातर क़यामत की हौलनाकियों और उस मंजर के साथ है, मोमिनीन का हाल भी, काफरों का भी, मुशरिकीन मुनाफिकीन का भी, और इसकी हौलनाकियाँ जो होंगी ख़ास तौर से उस पर एम्फसिस नज़र आता है। और जो ज़ाहिर है बुरे जो बदबख्त यानी कि जो अल्लाह माफ़ फरमाए जो होंगे उनकी एक जो निशानियाँ अल्लाह ने आगे आयत नंबर 33 में दो किस्म की बताई, कि ये लोग ईमान नहीं रखते एक तो अल्लाह पे, और ये मिस्कीनों को यानी खिलाने की तरगीब नहीं देते। अब यानी इनके अंदर इनका जो फेथ है वो बहुत वीक होता है, तो इनके बारे में इन्नहु कानू ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुज़ु अला तुआमिल मिस्कीन, इनके बारे में बताए ये वो लोग हैं, ये जो क़यामत के बारे में जिनके बारे में आ रही थी चीज़ें सारी, तो दीज आर दोज़ पीपल जो ये दो काम, जो एक ये फेथ नहीं रखते और ये खाना खिलाने की आगे गरीबों को इसकी तरगीब नहीं देते। और फिर ज़ाहिर है आगे आयत नंबर 38 से लेकर ऑनवर्ड्स 43 तक हम एंड में तक सूरत के अगर गौर करें, तो नबी अलैहिस्सलाम की सदाकत के ऊपर अल्लाह ने यहाँ पे कस्में बाकायदा खा दी कि ये लो ये जिन्हें तुम देखते हो और इन चीज़ों की जिन्हें तुम नहीं देखते, बेशक ये कुरान जो है ये अल्लाह के रसूल बुज़ुर्ग बड़े पाक रसूल का लाया हुआ है, और ये किसी शायर का कॉल नहीं है, या ये कोई बस तुम लोग यकीन नहीं रखते हो, तो इस बारे में ही नसीहत अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन्हें दोबारा देना चाहिए कि बहुत कम नसीहत कबूल करते हो, लेकिन ये है रब्बुल आलमीन का ही उतारा हुआ कलाम, इस पर तुम्हें ईमान लाना चाहिए। फिर यहाँ से आगे सूरह मआरिज शुरू होती है, जो कि ऑर्डर के एतबार से कुरान पाक की 78 नंबर पे सूरत है और नाजिल होने के एतबार से दिस इज़ द 79 सूरत। ये मक्की सूरत है, इसमें 44 आयात और 2 रुकू हैं। मिनल्लाहि ज़िल मआरिज आयत नंबर 3 में आएगा, जिस मआरिज का यहाँ पे ज़िक्र है, यानी ये अल्लाह सुबहाना व ताला के जो दर्जात हैं उनकी तरफ से नाजिल होगा। मिनल्लाहि ज़िल मआरिज, तो वो दर्जात यानी कि उसका जो स्टेटस है, इससे ज़ाहिर है सही इसका ये मीनिंग तो अल्लाह सुबहाना व तआला ही जानते हैं। हम कुरान के बिल्कुल यकीनी तौर पे तो इसको अज़ूम नहीं कर सकते कि इससे मतलब क्या है, लेकिन अल्लाह का जो दर्जात हैं, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके बारे में वहाँ से लाया हुआ कलाम है, इतना हम कह सकते हैं। एनी हाउ, आगे इस सूरत में शुरू में ही जैसे देखें तो जो कुफ्फार थे वो ज़ाहिर है आप अलैहिस्सलाम की दावत का मजाक उड़ाते थे, उनके साथ बड़े जुल्म ज़्यादतियाँ करते थे, तो उनका जिक्र मिलता है। फिर आगे दोबारा वंस अगेन इन सारी सूरतों में हम देखते हैं कि क़यामत की हौलनाकियों का हमें मिलता है जिक्र ज़रूर, और ये बहुत एक साइमल्टेनियस हर सूरत के अंदर ऑलमोस्ट, यहाँ पे भी आयत नंबर 8 से ऑनवर्ड्स 14 तक हम देखें तो यही है, और उससे आगे हम चलें फिर दोबारा बार बार रेपिटेशंस के साथ इन सूरतों में आए, जैसे इसमें भी वर्स नंबर 19 से 22 तक हम देखें तो इंसान की जो फितरत है और जो तबीयत है कि भाई उसे कोई तकलीफ़ होती है तो वो चीखता है, या जब कोई नेसल नेमत अल्लाह उसको दे देता है तो वो करने लगता है कि तो मुझे मैंने खुद ली है, उसका प्राइड शुरू हो जाती है, तो उसका जो ईगो प्रॉब्लम्स हैं और इनकी फितरत और तबीयत के बारे में कि ये बड़ा ही माइजर है, लेज़ी है, या इसकी जो इंसान की पहचान है असल में, इसकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसके बारे में कुछ चीज़ें अल्लाह ने बयान फरमाई। और जो ख़ास तौर से एंड में आयत नंबर 23 से 34 तक अगर हम गौर करें तो मुसल्लीन जो होते हैं नमाज़ पढ़ने वाले लोग, इनकी कुछ सिफ़ात, अल्लज़ीन हुम अला सलातिहिम दाइमून वल्लज़ीन फ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुन मालूम लिस्सा वल महरूम वल्लज़ीन युसद्दिक़ून बियौमिद्दीन, इन आयतों में हम देख रहे हैं कि नमाजियों की जो सिफ़ात हैं कि वो अल्लाह का हक अदा करते हैं और ज़कात के ज़रिए वो ज़ाहिर पे ऑफ करते हैं, और जो हकूक़ुल इबाद हैं उनका भी हक अदा करते हैं, दोनों हकूक़ अल्लाह भी और हकूक़ुल मिला इबाद दोनों ये सही तरह अदा करते हैं नमाजी, और ज़ाहिर आखरत से डरते हैं और इताअत करते हैं अल्लाह की, और ज़िना और इस जैसे बुरे कामों से दूर रहते हैं और हलाल की तरफ फोकस रखते हैं, हराम से बचने की कोशिश करते हैं, अमानतें पूरी करते हैं, हक और अदल यानी कि इक्वालिटी रखते हैं आपस में, और इस तरह की इनकी सिफात नमाजियों की बताई। और फिर जन्नतों में जो इज़्ज़त वाले लोग होंगे ज़ाहिर है उनके बारे में आता है कि आयत नंबर 35 में उनके बारे में ये वही जो बड़े इज़्ज़त वाले अल्लाह ने फरमाया यहाँ पे आयत नंबर मुकरमून उलाय का फ़ी जन्नत मुकरमून, ये बड़े दे विल बी वेरी रिस्पेक्टेबल पीपल ओवर देयर, ये हम समझ सकते हैं, दे विल बी द रिस्पेक्टेबल पीपल, जो आज के ज़माने में भी हम देख लें हर ज़माने में ही इंसान का जो ड्रीम होता है, जो वॉट ही वॉन्ट्स इज़ टू बी रिस्पेक्टेबल अराउंड वेर एवर ही लिव्स इन, तो वो उस दिन वहाँ पे इन्हें मिल जाएगी रिस्पेक्ट इंशाल्लाह, एक फॉर इटर्नल रिस्पेक्ट। और जाहिर है ये फिर नसीहत के दीन जो है वो हमारा मोहताज नहीं है, अल्लाह सुबहाना व ताला को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम ही अल्लाह के मोहताज हैं, हमें ही उसकी ज़रूरत है, तो हमें इस पे गौर और फिक्र करनी चाहिए। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो सूरह नू के अंदर ये जो ऑर्डर के एतबार से 71st और नाजिल होने के एतबार से भी कुरान पाक की 71st सूरत ही बनती है, दोनों 71 नंबर पे नाजिल भी हुई और 71 नंबर पे कुरान पाक में मौजूद है। और एक ये बात है इसमें हम गौर करें तो इस सूरह नूह में भी हम आगे गौर करते हैं कि पहली बात ज़ाहिर है मक्की सूरत है और इसमें 28 आयात और 2 रुकू हैं जो इसकी बेसिक, और ख़ास तौर से इसे नू कहने की वजह ऑफ कोर्स समझ आ रही है, इसमें सूरह नू में नू अलैहिस्सलाम का किस्सा बड़ा डिटेल में यहाँ पे मेंशन्ड है। इन्हें शेखुल अंबिया भी कहा जाता है क्योंकि इनकी ज़ाहिर एज जो थी वो नॉर्मल तमाम अंबिया से बड़ी थी, इनके बारे में आता है 850 साल ही लिव्ड ऑन दिस अर्थ। और दूसरी है कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले जितने भी अंबिया थे या नहीं थे, लेकिन उसमें पहले रसूल जो थे वो नूह अलैहिस्सलाम ही थे, तो ज़ाहिर इन्हें अबुल अंबिया भी इस हवाले से कहा जाता है। पहले 1st से 6 आयात में बिल्कुल कि इनकी कौम के बाद ये इनको डराने आए और किस तरह से इनका वाक़या चलता है, लेकिन आगे एक बहुत काबिले इम्पॉर्टेंट बात जो है वो हमें मिलती है आयत नंबर 10 से ऑनवर्ड्स 14 में, इन्होंने अपनी कौम से बार बार कहा फ़कुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ़ारा युरसिलिस्समा अलैकुम मिद्रारा वयुमदिदकुम बि अम्वालिन वबनीन वयजअल्लकुम जन्नातिन वयजअल्लकुम अनहारा मा लकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा, यानी कि इस टोन के अंदर इन्होंने ज़बरदस्त दावत दी कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इस्तग़फ़ार करो अल्लाह से, अल्लाह से माफ़ी मांगो अपने गुनाहों पर, वो तुम्हें सब देगा, सारी दुनिया की नेमतें वो तुम्हें देगा। इन्होंने बिल्कुल जैसे एक नबी का दर्द था उससे बात की, और इतनी एक इस्तग़फ़ार की इससे हमें फजीलत, एक आयत से सिर्फ अगर इन थोड़ी तीन चार आयतों को देखें तो सिर्फ अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि जो भी इस्तग़फ़ार करेगा बस अल्लाह से, गुनाहगार हो कोई भी हो, इसकी कोई कैद नहीं होगी इसमें, जो इस्तग़फ़ार करेगा अल्लाह से वो उसके लिए आसमान से बारिश भी रहमत वाली देगा, वो बंदे का किसी को माल का प्रॉब्लम है तो उनकी माल से मदद होगी इंशाल्लाह, कोई औलाद का तलबगार है वो अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता रहे तो इंशाल्लाह उसे औलाद भी मिलेगी और उसे ग्रीनरी और नहर हर किस्म की जो नेमतें हैं वो अल्लाह देगा इस्तग़फ़ार के ज़रिए से, ये अल्लाह सुबहाना व तआला यहाँ पे फरमा रहे हैं। और ये कि अल्लाह की जो नेमतें हैं फिर उनका ज़िक्र के अल्लाह ने सात आसमान पैदा किए, चाँद को बनाया और सूरज को ब्राइट यू नो रोशनी से बनाया, तो इसका थोड़ा सा ज़िक्र, और फिर आगे इन बुतों के बारे में कि ये बहरहाल इनके ऊपर जो मुशरिकीन हैं इन पर कोई असर नहीं होता और ये अपने बुतों पे ही लगे रहेंगे ज़ाहिर है, तो इनके इसके लिए क्योंकि तैयार नहीं है तो इनके लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली फिर हलाकत होगी, और इसीलिए यहाँ पे भी इसका तस्करा आता है। यहाँ पे ये सूरत फिर ऐसे एंड इसी तस्करे के ऊपर, और इंशाल्लाह आगे सूरह जिन फिर हम स्टार्ट करते हैं अगर, तो ये मक्की सूरत है, इसमें 28 आयात और दो रुकू हैं, बिल्कुल शुरू में ही कुल उहिया इलैय अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी लर्रुश्द फ़आमन्ना बिह वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा। इन आयात में बिल्कुल कैटेगोरिकली इस जिनों को जो दावत दी थी नबी अलैहिस्सलाम ने उसका तस्करा है इसमें यहाँ पे, और उनकी कॉन्वर्सेशन और उनका अपने वर्ड्स के उन जिनों ने क्या क्या कहा, तो पता इससे ये चला कि एक तो वो बिल्कुल इंसानों की तरह ही अल्लाह की कोई मखलूक हैं और शरई अहकाम के मुकल्लफ़ हैं, विच मीन्स के राइट और रॉन्ग, जजा और सज़ा इसके वो भी मुकल्लफ़ हैं, जैसे दूसरे जानवर वगैरह इसके मुकल्लफ़ नहीं होते, हु हैव नो सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, हक और बातिल और हिदायत और गुमराही जलालत, इसके बीच में जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता उससे तो ज़ाहिर है कोई पूछनी है, लेकिन जो कर सकता है उससे पूछ होगी, और ये भी उन्हीं में से हैं जैसे कि इंसान है। तो उन्होंने कुछ जब कायनात में देवर सीन चेंजेस, जो पीछे शहाब साकिब का भी जिक्र आया था कि वो बिफोर दे यूज टू डू थिंग्स दैट दे वर अनएबल टू डू नाउ, तो ऐसे कुछ अहकाम जो इन द स्पेस और इन द स्काइज चेंज हुए थे अल्लाह के ऑर्डर्स में से, तो इनकी भी पावर्स उसमें से ये महसूस कर रहे थे कि चिनिए। तो बहरहाल एक दिन नबी अलैहिस्सलाम चंद सहाबा के साथ एक जगह जिसका नाम था सूक अवकाज़ उसको कहते हैं उस जगह को, वहाँ कुछ तशरीफ ले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ऑर्चर्ड में या कह लें या डेट फार्म में या समथिंग लाइक दैट, नखला का लफ्ज़ आता है नखला, खजूर के पार्क फार्म समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पर फजर की नमाज अदा कर रहे थे, तो ये जिनों में से कोई एक सम ग्रुप वहाँ पे आ गया और उन्होंने जब कुरान सुना तो दे उनको वहीं पे ज़ाहिर है बहुत उसकी टची लगा, एंड दे फाउंड आउट जो चेंजेस जो तब्दीलियाँ वहाँ वो यूनिवर्स में फाइंड कर रहे थे देख रहे थे और हो रही थी और जिसका वो मुशाहिदा कर रहे थे ऑब्जर्विंग दोस चेंजेस, तो वो उसके बारे में कुरान जब बात कर रहा था तो इन्हें दे बिलीव कि हाँ यकीनन दिस इज़ द ट्रूथ, जबकि इंसान तो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं था जो कुरान में तिलावत हो रही है। तो खैर एनीवे इन्होंने इस चीज़ का इकरार किया एंड उन्होंने ये भी कहा कि हाँ हम भी इंसानों की तरह ही हैं और हमारे में भी कोई गुनहगार हो सकता है, नेक हो सकता है, काफिर हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, जैसे कि शैतान भी खुद एक जिन था और वो पहले बहुत बड़ा इबादत गुजार और मुसलमान कह लें उसको, एक सेंस इन द सेंस मोमिन कह लें कि वो अगर जिन ही था और वो वहाँ पे इतना बड़ा इबादत गुजार था कि फरिश्तों से भी आगे, जिसके बारे में सूरह यूसुफ में अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत बात हो चुकी है। एनी हो यहाँ तो अपना फोकस से हम अगर दोबारा कॉन्सनट्रेट करें तो वर्स 20th और वहाँ से ऑनवर्ड्स 23rd तक हम देखते हैं कि قل انما ادعو ربي ولا اشرك بربي احد قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا, ये यही बात के मेरे हाथ में कुछ नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम की जो दावत है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंसानों को ईमान और तौहीद की दावत दे रहे हैं, उनके अपने हाथ में तो कुछ नहीं है, तो बहरहाल वो तो उनका काम तो सिर्फ मैसेंजर का है, पैगाम पहुंचाने का है, आगे मानना ना मानना तो इंसान की अपनी गुमराही या कामयाबी का वो होगा रिजल्ट उसमें। एनी हाउ आगे सूरह मुजम्मिल आती है जो कि ऑर्डर के एतबार से 73rd सूरत है, लेकिन नाजिल होने के एतबार से ये बिल्कुल शुरू की जो वही नंबर 3 थी, ये सॉर्ट ऑफ कह लें क्योंकि नाजिल होने के एतबार से 3rd सूरत बनती है। इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, फिर अभी आगे या अय्युहल मुद्दस्सिर आएगी और उसके बाद ये या अय्युहल मुजम्मिल, ये 3rd नंबर पर आई। इसमें बिल्कुल शुरू में क्योंकि या अय्युहल मुजम्मिल कहा तो इसीलिए इसको सूरह मुजम्मिल कहते हैं। इसमें 20 आयात और 2 रुकू हैं और इस सूरत के अंदर मुजम्मिल मीन्स लिपटा हुआ, यानी कि रैप्ड अप कह लें, जैसे कि कोई कोजी अपने जो कह लें अपना जो क्विल्ट है या अपनी जो चादर है उसे अपने पूरा बॉडी को कवर करके रात को सोता है सर्दी में, तो इस तरह से लिपटा हुआ कोई बंदा हो या वैसे डरा हुआ कोई अपने आप को कवर कर ले, एनी हाउ उसे मुजम्मिल कहा जाता है। तो उसकी नस्बत से इसे यहाँ पे उनका एक टाइटल उन्हें दिया क्योंकि उसकी जो कपै वो उस तरह से लिपटे हुए थे जब ये वही उतरी, रात को सो रहे थे गालबन आराम फरमा रहे थे। तो ये इस सूरत में बिल्कुल नबी अलैहिस्सलाम के जो डिफरेंट लाइफ के जो डिफरेंट पहलू हैं उनके जो वो हैं, आप हाउ डू डी वर्शिप, इताअत कैसे करते थे, उनकी रात की इबादत और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसीलिए शुरू की आयतों में हमने देखा कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात थोड़ी रात को आप इबादत करें उनसे कहा, क्योंकि बज़ाहिर ऐसे मालूम होता है कि नबी अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा इबादत करते थे पूरी पूरी रात, तो अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया अगर चाहें तो आधी रात आप इबादत करें और आधी रात यू कैन रेस्ट। तो इसलिए भी उनकी एक फजीलत में कह लें उसके उनके डिफरेंट लाइफ के पहलू उसके बारे में ये यहाँ पर बात मिलती है। और ज़ाहिर है आगे आयत नंबर 5 में इन्ना सनुल किया अली का कौल सकीला के यकीनन वेरी सून वी आर गोइंग टू प्लेस अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद क्योंकि यहाँ का कौलन सकीला एक भारी कॉल जैसे, तो इससे मुराद क्योंकि कुरान अजीम था ज़ाहिर है वो एक ही इट्स हैवी वेट, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने वाली है उसकी नस्बत से यहाँ पे कहा कौलन सकीला, तो उसके लिए आपकी एक तरबियत की हो रही है इस हार्ड वर्क और इस तरह के एक टफ स्केजल से। और फिर यही कि आगे आयत नंबर 10 से 13 तक सब्र करने की आपको तलकीन की जा रही है कि आप सब्र फरमाएं, ये मुशरिकीन तो जो भी कहते हैं आप बस इनसे घबराएं ना, और जो झूठ बोलने वाले हैं उनको डराने के लिए फिर फिरौन का थोड़ा सा किस्सा हमें मिलता है सूरत में, और फिर जो रसूल और सल्लम और जो मोमिनीन है उन पर यानी तख़फीफ कह लें, यानी वही जैसे नमाज में पूरी रात नहीं करना, पहले ये था कि सुलुस या 1/3 या 2/3 आप पूरी रात इबादत कर रहे हैं, तो नहीं, जितना आसानी से हो सकता है आप कर लें और जितना मुश्किल लगे उसको ना भी किया जाए तो ये इबादत कोई फ़र्ज़ नहीं है। और बिल्कुल इस सूरत के आयत नंबर 20 को अगर हम देखें तो इसमें बिल्कुल डिटेल कि तहज्जुद भी ज़ाहिर है मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं है, तो सिर्फ इस्तेहबाब है, जो पढ़ेगा ज़ाहिर है उसका बहुत हाई लेवल होंगे जन्नत में इंशाल्लाह, लेकिन ना भी पढ़ी तो कोई फ़र्ज़ नहीं होगी, तो इसके अहकामात हमें यहाँ पे मिलते हैं। आगे सूरह मुदस्सिर जो कि ऑर्डर के एतबार से कुरान पाक की 74th सूरत है और नाजिल होने के एतबार से 4th सूरत बनती है, यानी मुजम्मिल के बाद सॉरी नाजिल हुई थी। या अय्युहल मुद्दस्सिर से स्टार्ट होती है इसीलिए इसे मुद्दस्सिर कहा गया। मक्की सूरत है, 56 आयात और 2 रुकू हैं, और मुद्दस्सिर कहते हैं ये नबी अलैहिस्सलाम का अगेन एक मुजम्मिल होता है एक डिफरेंट कैपेसिटी में, जब एनी वॉज रैप्ड अप इन खौफ के कैपेसिटी में या मेंटल स्टेट में, और यहाँ पे एक अगेन ही वॉज रैप्ड अप, तो या अय्युहल मुद्दस्सिर से ये मुराद ली क्योंकि आप थोड़ा सा डरे और खौफ के मारे क्योंकि कपड़े में ओढ़े हुए अपने आप को तशरीफ़ फरमाते, तो उसके मुनासबत से आप या अय्युहल मुद्दस्सिर आपको एक टाइटल दिया है मुद्दस्सिर है लिपटे हुए। फिर ये कि इसकी शुरू में ही अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए फ़रब्बिका वकब्बिर सियाबका वतौहिर वरुज्जफा जो इन आयतों में ही उनको दावत का, और फिर आगे हम देखते हैं कि क़यामत कुफ़ार को डराने की बातें और फिर जो उनके जवाबात वो देते हैं उनके ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र करने की तलकीन फरमा रहे हैं। और आगे आयत नंबर 8 से ऑनवर्ड्स 10 तक तकरीबन अगर हम गौर करते हैं तो जो मुजरिमों को जो उस दिन के अजाब की बात से डराया जा रहा है। यहाँ पे एक शख्स था वलीद बिन मुगीरा, आयत नंबर 11 से ऑनवर्ड्स वजालतु लहु मालम ममदूदा, इसका जिक्र आ रहा है। ये ज़ाहिर है नबी अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन था ये वलीद बिन मुगीरा, और ये जब कुरान सुनता था तो पहचानता भी था कि हक है, मानता था अल्लाह का कलाम है, लेकिन बग़ैरत कहता था उस, अपने घमंड में, ईगो में और अपनी प्राइड में इसका इनकार करता था, और माज़ अल्लाह इसे जादू और मैजिक और इस तरह की बातें करता था। तो उसके बारे में ये जिक्र आता है, और फिर उसके आगे ही फिर जहन्नुम के दारोगे का जिक्र आयत नंबर अगर हम 26 ऑनवर्ड 31 में देखें कि जो जो वॉचमैन होंगे जहन्नुम के, उनकी बात कि उनका सामना ये कफार फाजर लोगों को करना पड़ेगा उस दिन। और फिर आगे आयत नंबर 32 से ऑनवर्ड चलें 35 तक, तो फिर चांद और जो रात और सुबह की कसम अल्लाह ने बाकायदा यहाँ पे खाई कि कल्ला वल कमर वल लैली इज़ अदबर व सुबह इज़ असफर, बाकायदा इनकी कस्में अल्लाह सुबहानहू व तआला ने यहाँ पे खाई। और ये इनकी इतनी बड़ी कस्में खाने के बाद आगे आयतों में बताना ये मकसूद था, आयत नंबर 38 से 42 तक, जो आमाल नामे जिनके ज़ाहिर दायात पे होंगे वही सिर्फ कामयाब होंगे, और वो किसी को एक दूसरे के लिए कोई वहाँ पे सिफारिश नहीं चलेगी। क़यामत का दिन जो होगा वो मुजरिमों से सवाल होगा एनी हाउ, और क़यामत की हालांकि इन सब सूरतों में हमें मिल रही हैं, और किस चीज़ ने इन्हें दोजख में डाला है आगे ख़ास तौर से गौर करने वाली बात है। जब इनसे पूछा जाएगा आयत नंबर 43 से तकरीबन 46 तक कि तुम्हें दोजख में तुम गए कैसे, तो इसका ये जवाब क्या देंगे, वो दे कहेंगे फी जन्नत या सलून, जब इनसे जन्नत वाले सवाल करेंगे अनिल मुजरिमीन से कि मा सला का कुम्फी सकर, तुम्हें किस चीज़ ने इस जन्नों में डाल दिया भाई, तो ये कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकुम नुतइमुल मिस्कीन वकुन्ना नखूज़ु मअल ख़ाज़ीन, के बस हम नमाज़ नहीं पढ़ते थे और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, और तीसरा हम लोग गुमराही और ज़ाहिर हिमाकत में पड़े हुए थे, और चौथा हम लोग झुटलाते थे यौमुद्दीन को, क़्यामत के दिन को। इसके बाद ये सूरत का बिल्कुल एंड यही बताता है कुरान एक नसीहत है, जो चाहे इससे नसीहत हासिल कर सके, लेकिन ये इसके लिए है जो अल्लाह से डरे, डरे बगैर जब ईगो और बायस को साइड पे नहीं रखा जाएगा तब तक तो ऑफ कोर्स कैसे डिसाइड होगा, लेकिन उसके बगैर जो अल्लाह से डरेगा वो उसे ज़रूरत ज़रूर बज़रूर इस किताब से हिदायत मिलेगी इंशाल्लाह। इसके बाद आगे सूरह क़यामा जो कि ऑर्डर के एतबार से कुरान पाक की 75 नंबर पे सूरत बनती है, और नाजिल होने के एतबार से 31st सूरत है, ये भी मक्की सूरत है, इसमें 40 आयात और 2 रुकू हैं। शुरू में ही बिल्कुल आयत नंबर 1 से 13 तक हम देखा हमने ला उक्सिमु बियौमिल क़यामा, क़यामा का जिक्र आया, तो इसमें ऑब्वियसली अगेन क़यामत के पूरे जिक्र के साथ आयत नंबर 1 से लेकर ऑनवर्ड्स पूरे 13 तक उसकी हौलनाकियों के जिक्र भी आएंगे, और एक शुरू में यौमुल कियामा के बारे में नफ्सुल लवामा की कसम खाई अल्लाह ने, वला उक्सिमु बिन नफ्सुल लवामा दूसरी आयत में। ये नफ्सुल लवामा मुराद यहाँ पे ये है, तीन किस्म के नफ्स के बारे में अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया। एक होता है नफ्स अम्मारा, ये वो होता है जो हर वक्त बस एक सरकशी और बुरे कामों में ही पड़ा हुआ है, कोई इसके अंदर नेकी या खैर ही नहीं है एक बंदे में, वो अम्मारा है नफ्स, अल्लाह हमें हम सबको उससे बचाए। एक होता है नफ्स मुतमइन्ना, यानी कि बिल्कुल जो मुतमइन्ना ज़िया या तो नफ्सुल मुतमइन्ना आगे आएगा सूरह फजर में इंशाल्लाह, तो वो होता है जो बिल्कुल नेकी पर आमादा होता है और बुराई उसके अंदर मौजूद ही नहीं रहती, इन द वे कि वो करता भी है तो अल्लाह से तौबा कर लेता है फौरी। और एक होता है नफ्स लवामा, जो गुनाह तो करता है इंसान लेकिन उसके समझें उससे उसमें मलामत होती है, उसमें कुछ ना कुछ खैर बाकी होती है, ही रिग्रेट्स, तो ये जो रिग्रेट वाला पहलू होता है ये इसमें मौजूद होता है नफ्स लवामा में, उसकी अल्लाह ने यहाँ पे कसम खाई है। और फिर आगे आयत नंबर 4 में ये भी बताया कि इसकी हम बिल्कुल बला कादरीन अला नुसविया बनाना, जो हमारी फिंगरप्रिंट्स होती है ना इसका तस्करा, कि हमारी जो उंगली की पोर पोर है इसको हम दोबारा एग्जैक्टली उसी तरह बना देंगे। और इससे ख़ास तौर से एक हमें नुक्ता भी ये मिलता है, अल्लाह ने यहाँ पे ये नहीं फरमाया कि हम पैदा कर देंगे, نصب یا بنانا، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم درست کر دیں گے، ویل اسٹریٹن اپ اگین. تو یہ ایک علمی نقطہ بھی ہمیں ملتا ہے. اور آج کی اگر لیٹسٹ ہم ٹیکنالوجی کے اوپر جائیں اور دیکھیں تو لیٹسٹ دنیا کی جو اکوپمنٹ بھی ہے وہ یہ کہتا ہے دنیا میں کسی کا بھی فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہوتے. تبھی دنیا کی لیٹسٹ سیکیورٹی جو نظام بھی ہے وہ فنگر پرنٹ ٹیکنالوجی پہ ہی کام کرتا ہے. ایون پاسپورٹ آفس ہو، آئی ڈی کارڈز ہوں، کچھ بھی ہو، ہر چیز فنگر پرنٹ سے سیف ہوتی ہے. ایون سگنیچر از ناٹ دیٹ سیف. یہ تو اس پہ پوری دنیا کا اتفاق ہے. اینی اور اس کے بارے میں، اور پھر آگے آف کورس قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر اللہ نے آیت نمبر 7 سے آنورڈ 10 تک ہم دیکھتے ہیں، جب ہر چیز سورج چاند سب کی روشنی غائب ہو جائے گی اور ادھر ادھر انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، اسے بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. آگے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ورسٹ 16 سے آنورڈ 19 تک، لا تحرک بھی لسان کا لتا جلبی انا علینہ جم او قرآنہ. اللہ نے آپ کو تسلی دی، جو ہوتا یہ تھا جب جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن پاک سکھانے آتے تھے تو آپ جلدی جلدی اسے اس پہ زور دیتے تھے، محنت کرتے تھے کہ اب میں اسے یاد کر لوں کسی طرح. تو اللہ نے کہا آپ اسے اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، اسے جمع کرنے اور محفوظ رکھنے کی ذمہ داری جمع ہوا قرآن یہ ہمارے اوپر ہے. انا علینا، دس از آن اس، یو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ، ہم اسے آپ کے سینے میں محفوظ خود ہی کر دیں گے. اور آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ نیک لوگوں کا اور وہ اسی طرح بدبخت لوگوں کا، دونوں دو قوموں فریقوں کا کہہ لیں یا دو ڈفرینٹ گروپس آف پیپل کی باتیں. آیت نمبر 22 سے 23 میں پہلے نیک جو لوگ ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور الا ربیا ناظرہ، وہ جو اور وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. اور جو بدبخت لوگ ہوں گے وہ ظاہر ہے ان کے چہرے جو ہوں گے وہ بالکل سوکھے ہوں گے اور وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، ان کی بارے میں ذکر آتا ہے. اور پھر یہی ظاہر ہے اس سے سمجھ بھی آتا ہے کہ اسے اللہ نے کسی کو بیکار پیدا نہیں کیا، موت کا ایک وقت ہے. یہ آیت نمبر 26 سے 30 تک اگر غور کریں تو انسان کا جو حال ہے اور جو اس نے کرنا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے. اور پھر اللہ نے فائنلی حشر اور میعاد جو اس دن کا دن ہے اس پہ ایک دوبارہ پیرے پیدا کرنے کے اوپر قادر ہونے کی بھی دلیل دی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے جیسے پیچھے آیت نمبر 4 میں ہم نے دیکھا پہلے فنگر پرنٹس کو بھی ہم اسی طرح سے بالکل دوبارہ اسٹریٹن آؤٹ کر دیں گے تو باقی تخلیق کیا مشکل ہے اللہ کے لیے. یہاں سے پھر سورہ انسان شروع ہوتی ہے آگے، جو کہ آرڈر کے اعتبار سے قرآن پاک کی 76 نمبر پہ سورت بنتی ہے اور نازل ہونے والی 98 سورت ہے. یہ مدنی سورت ہے، اس میں 31 آیات اور 2 رکوع ہیں. بالکل شروع میں حل تعالی الانسان حین امر الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ آیت کے اندر ہمیں انسان کا لفظ آتا ہے. ہم نے انسان کے اوپر اس حل تعالی الانسان کے ہم نے نہیں دیا انسان پر، ہینا داری زمانے کے ساتھ اس کو نسبت دی جا رہی ہے تو اسے سورہ انسان کہا جاتا ہے. اور آگے کیونکہ دہر زمانے کا بھی لفظ آ رہا ہے تو کبھی کبھار اسے سورہ دہر بھی اسی لیے کہا جاتا ہے. اس کے دو نام ہیں لیکن ظاہر ہے انسان کی وجہ سے سورہ انسان زیادہ فیمس ہے. اور ویسے اس کے اندر ظاہر ہے جنت اور اس کی نعمتیں اور جہنم کے عذابوں اور دوبارہ اگین ریپیٹیشن اس کے واقعات کی ملے گی، لیکن ایک خاص طور سے ایک مسلم شریف کی روایت ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جمعے کے دن فجر میں اس سورت کی خاص طور سے تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو اس کی ایک فضیلت اس مسلم شریف کی روایت سے بھی ملتی ہے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں تو پھر کافروں اور شکر گزاروں کے لیے جو آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو کس لیے پیدا کیا، اور اس میں کچھ ہیں جو کافر ہیں انہیں آخر میں ظاہر ہے زنجیروں سے یو نو دے ول بی قید اینڈ اریسٹڈ، اور انہیں گلوں میں ان کے توک اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ان کے ساتھ معاملات ہوں گے جو، اور جو شکر گزار ہوں گے ظاہر ہے ان کی نشانیاں کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ جب کوئی نظر مانتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں اور اللہ کے لیے قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور یہ کہ وہ اللہ کے رضا کے لیے مسکینوں یتیموں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں اسیروں کو. تو یہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شان میں آیتیں نازل ہوئی تھیں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. تو یہ اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے تھے، ان کی شان میں آیتیں نازل ہوئیں. آگے پھر ایک عظیم نعمت दोबारा जिसका कोई बदल और कोई मिसाल नहीं है उसका तस्करा हमें मिलता है आयत नंबर 23 से ऑनवर्ड 26 के अंदर, वो ये कि अल्लाह ने इस कुरान को तदरीजन नाजिल किया, एकदम से नाजिल नहीं किया। तो इससे भी एक तरह की अल्लाह की नेमत ही समझना चाहिए। फ़सबिर लिहुक्म रब्बिका वला तुतिमिन्हुम इस्मन कफूरा, कि बस आप सब्र करें और अपने रब का जो हुक्म है उसे मानते रहें। क्यों? क्योंकि इन्ना नहनु नज़लना अलैकल कुरआना तंजीला। तो इसको एक नेमत के फॉर्म में बयान किया क्योंकि हमने आप पे एकदम नहीं उतारा। आगे जैसे पीछे गुजरा था, अगर एकदम तो पहाड़ पे भी उतार देते तो वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। तो ये भी एक अल्लाह की नेमत थी, अल्लाह ने तरतीला उतारा इन स्टेडी स्टेप वाइज फॉर्म, स्लोली, नॉट वन ऑल ऑफ अ सडन। और बिल्कुल एंड ये सूरत मुशरिकीन को दोबारा से सख्त तंबीह करते हुए और डराते हुए होती है। इसके बाद सूरह मुरसलात, जो कि ऑर्डर के एतबार से 77 नंबर पे आती है कुरान पाक में, और नाजिल होने वाली ये 33rd सूरत है, यानी कि 33 नंबर पे नाजिल हुई। इसमें 50 आयात और 2 रुकू हैं। बिल्कुल फर्स्ट आयत में वल मुरसलात उर्फा आता है, तो इसीलिए इसे सूरह मुरसलात कहा गया। इसी लफ्ज़ से मुरसलात कहते हैं अरबी में हवाओं को जो स्लोली चलती हैं, तो उन हवाओं जो बिल्कुल स्टेडी एक वे में जा रही होती है उनकी कस्में खा के अल्लाह ने ये सूरत स्टार्ट की। और 5 डिफरेंट किस्म की कस्में पहले तो इन आयतों में, वल आसिफाती आसफा वन नाशिराती नशरा, इन 5 कस्मों के बाद अल्लाह ने आयत नंबर 7 में हम देखते हैं तो इन्नमा तू अदून लवाके, ये पहले भी हमने देखा था कि जब हवाओं की कस्मों के बाद अल्लाह ने यकीनन वो दिन आने वाला है क़यामत का दिन, तो उससे डराने की बात अल्लाह ने की। इस पे पहले बात अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। और फिर इसके आगे हम आयतों में देखते हैं तो जो कुर्बे क़यामत की जो निशानियां हैं कि सितारे बेनूर हो जाएंगे, बिल्कुल आसमान टूट जाएगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, बिल्कुल हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाएगी। और फिर क़यामत का दिन जिसे यौमुल फ़स्ल कहा गया यहाँ पे, यानी वो दिन जो फ़ैसले का दिन होगा। मा अदरा का मा यौमुल फ़स्ल, लियौमिल फ़स्ल जैसे आयत 13 नंबर से कहा गया। और ये क्या है, ये अल्लाह बिल्कुल दिखा देगा सबको फ़ैसले का दिन। एक चीज़ जो इसमें हमने गौर करनी है, अगर देखें तो आयत नंबर 15 में, फिर 19 फिर 24 28 34 37 40 45 47 49, 10 मरतबा इस सूरत में वही लोम इज़िल मुकज़िबीन, इन झूठे लोग जो इन सब बातों को देखकर जानते बूझते सब भी झुटलाने वाले लोग हैं, इनके लिए वही मुकज़िबीन, हर जगह वही मुकज़िबीन 10 मरतबा रेपिटेशन के साथ इस सूरत में आता है। आगे फिर आयत नंबर 20 ऊपर हम जैन की तरफ सूरत में, तो जो वही मरने के बाद दोबारा उठाया जाने का, यानी कि बैस बादल मौत, उसके ऊपर दलाइल के जिस तरह हर चीज़ जो ज़मीन में मुर्दों को ज़िंदा उगाती है, करती है, मरते हैं, मीठे पानी से सैराब कर सकता है, वो क्यों नहीं दोबारा ज़िंदा कर सकता किसी को। और मुकज़िबीन जो झुठलाने वाले लोग हैं, जिनके लिए कहता है कुरान वाली लुल मुकज़िबीन इधर बार बार, उनका और मुत्तकीन का फाइनली एक अंजाम फिर बताता है कि दोनों का ज़ाहिर है, मुकज़िबीन जो झुठलाने वाले हैं वो आग में होंगे और मुत्तकीन ऑफ कोर्स ठंडे बिल्कुल पीसफुल एटमोसफेयर में क़यामत के दिन होंगे। और फिर बिल्कुल लास्ट आयत में अल्लाह सुबहानहु तआला ने 46 से ऑनवर्ड्स हम देखते हैं वैलुल मुकज़िबीन से पहले कि कुलू व तमत्तउ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून, इन मुजरिमों को बहुत सख्त एक तब भी दोबारा एंड में कि अभी खा पी लो, जिसको पंजाबी एक लैंग्वेज में कहा जाता है ढेर भर के खा लो, फुल हैवी तोन के ठूस लो अपने पेट में, अभी जितना खा सकते हो खा लो, वहाँ तुम्हारा बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो यहाँ से हम इंशाल्लाह एक सूरह नबा यानी कि 30th पारे की फ़र्स्ट सूरत पर चलते हैं, विच इज़ ऑर्डर के एतबार से 78 सूरत कुरान पाक की, और नाजिल होने वाली 80th सूरत है कुरान पाक की। ये मक्की सूरत है, इसमें 40 आयात और 2 रुकू हैं। शुरू में बिल्कुल अम्मा यतसालून अनिन नबाइल अज़ीम, नबाइल अज़ीम, ये नबा का लफ्ज़ आता है, इसी की वजह से इसे सूरह नबा कहा जाता है। नबा कहते हैं किसी बहुत बड़ी एक ख़बर को यानी न्यूज़ को, कोई न्यूज़, ये किसी चीज़ के बारे में ऐसे बातें कर रहे हैं, विस्पर कर रहे हैं एक दूसरे से। ये मुशरिकीन जो थे ये आपस में पूछते थे ये नबाइल अज़ीम, नबाइल अज़ीम क्या है, तो ये इसके बारे में इनकी एक सरगोशियों की, इनकी विस्परिंग की बात चल रही है, ये लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं इस नबाइल अज़ीम के बारे में है क्या। तो इसके बारे में हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, उनका ये कॉल है कि इससे मुराद कुरान अज़ीम है, बेसिकली ये जो नबाइल अज़ीम है, जो बड़ी ख़बर है, ये कुरान अज़ीम है। لیکن جمہور بعض جو مفسرین ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہی ہے، یہی اس کو کہتے ہیں کہ راجے کال ہے یا زیادہ ایکسیپٹیبل کال ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے جس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، نبع عظیم اس سے کہا گیا. اور پھر آگے آیت نمبر 6 سے آنورڈ 16 تک ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جو قدرت کے دلائل ہیں، اس کے مناظر کی باتیں، جنت جہنم، اور جو زمین کو بنایا، پہاڑوں کو اللہ نے گرڈرز بنایا، اور انسان کو کپل ان اے پیئر بنایا، اور رات کو سونے کے لیے، دن کو کمائی کے لیے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، جو اللہ کی نعمت ہے، ان کی قدرت کی اللہ کی، اس کے دلائل اللہ نے دیے. اور آگے پھر کیوں نہیں اللہ، آیت نمبر 17 میں ہم دیکھیں کہ انا یوم الفصل کان میقاتا، اللہ کیوں نہیں یہ دن قائم کر سکتا، اور ضرور ایسی عدالت قائم ہو سکتی ہے جو کہ اللہ کرے گا، جس میں بگنر شروع کے اور آخرین سب کو جمع ہوگا، اور سب کے درمیان عدل فیصل، یعنی انا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہوگا. اور اس دن ظاہر ہے کوئی اللہ کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکے گا، جیسے آخری میں ہم اس صورت کے دیکھے تھے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، سب کے سب فرشتے ملائکہ ہر کوئی سامنے ایک صف در صف بالکل سٹریٹ ایک لائن میں کھڑا ہوگا، اور کوئی اپنے رب رحمان کا لفظ آیا لیکن اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکے گا، ذالک یوم الحق، یہ حق ہوگا، فمن شاء اتخذ الى ربی مآبا، انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینزل المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، پھر آدمی ضرور بہ ضرور دیکھ لے گا کہ اس نے کیا کیا تھا، اور ایک کافر جو ہوگا اس دن کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، یہاں پہ لفظ مٹی آتا ہے، اس کا ظاہر ایک مطلب تو یہ ہے کہ کاش میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، جب وہ اپنا انجام دیکھے گا. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا کہ کاش میں کبھی تکبر نہ کرتا، گھمنڈ نہ کرتا، اور یہ حق کی بات مان لیتا. اور یا یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ میں کوئی جانور وانور کچھ اور ہوتا، میں انسان ہی نہ ہوتا. بہرحال لیکن یہ کہے گا اس حسرت سے جب اس کی بات، یہ آگے اپنا ٹھکانا اپنا انجام دیکھے گا. تو اس کے بعد آگے سورہ نازعات سٹارٹ ہوتی ہے، جو کہ آرڈر کے اعتبار سے قرآن پاک کی 79th نمبر پہ سورت ہے، اور نازل ہونے والی 81 نمبر پہ نازل ہوئی. اس سورت میں 46 آیات اور 2 رکوع ہیں. اس کے بعد آنورڈ جتنی بھی صورتیں ہیں قرآن پاک کی، ان میں بس وہ ایک سنگل رکوع پہ ہوں گی. یہاں تک ملٹیپل رکوز والی صورتوں کا اینڈ ہوتا ہے، یہ لاسٹ صورت ہے. اسے ون نازعات غرقہ، بالکل پہلی آیت میں اللہ نے کہا، اسی وجہ سے اسے سورہ نازعات کہتے ہیں. نازعات کہتے ہیں جو فرشتے ہیں کے بارے میں، جو بالکل اس کے یعنی کہ دے ڈائیو اینڈ دے، وہ روح کو کھینچنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں، ان کی قسم اللہ نے کھائی. یعنی دے ڈائیو، وہ ڈوب کر ایک دم جمپ لگاتے ہیں اور تیزی سے کھینچ کے لے جاتے ہیں، ان کی قسم اللہ نے کھائی. یہاں پہ ڈفرینٹ 5 قسم کے فرشتوں کی اللہ نے قسم کھائی. اور لیکن آگے یہ نہیں پتہ چلتا، ون نازعات غرقا ون ناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، کہ ان پانچوں قسموں کا اللہ نے کس لیے قسم کھائی، وہ اس کا ایک ہڈن میننگ مفسرین نے کیا لکھا، لتبعثن، کہ ضرور بسرور اتنی بڑی بڑی فرشتوں کی قسمیں کھا کے کہ وہ قیامت کا دن ضرور آ کر رہے گا، اور تم اسے دیکھ لوگے، اس دن تم اٹھائے جاؤ گے. اور پھر آگے آیت نمبر 8 سے 9 تک دیکھیں تو قیامت کو جو جھٹلانے والے ہیں ان کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے. اور پھر آگے آیت نمبر 15 سے 26 اور اگین فرعون کا قصہ اور اس کا انجام، کہ اس کے ساتھ کیا برا ہوا، وہ بھی اپنے گھمنڈ اور اپنے غرور اور اپنی پرائیڈ کے اندر کیونکہ تھا مبتلا، تو اس کا کیا انجام ہوا، ان کو عبرت کے لیے وہ اللہ نے بتایا. لیکن بہرحال یہ کیونکہ لوگ بالکل سٹوپڈ ہیں، یہ اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے دوبارہ ان کے لیے کہ اللہ نے ایک جو ان کی انتم اشد خلقا ام السماء بنا، کیا تم، اللہ نے فرمایا کیا تم اس آسمان کو بنانے والے مجھ سے زیادہ ہو، میں نے اس آسمان کو بنایا، اللہ نے پرائیڈ سے بولا تم بنانے والے ہو، میں بنانے والا ہوں ان چیزوں کو، یہ دن کو، رات کو، زمین کو، میں نے والارض فراشا انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکا فسواها واغطش لیلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلک دحاها، اس آسمان کو بنایا، ان سب چیزوں کو بنایا، پہاڑوں کو گرڈرز بنایا، میں نے بنایا، تم نے تھوڑی بنایا. और बहरहाल लेकिन जो बिल्कुल इसका स्टिल रिजेक्ट इसको करता है उसका अंजाम का अन्नम यौमा यरौना लम यलबसू इल्ला अशियतन औ ज़ुहाहा, ये आखिर में बोलेगा कि मैं काश, मुझे तो ऐसे लगता है मैं दुनिया में सिर्फ एक शाम या उससे भी कम कुछ हिस्सा रहा हूँ, लम यलबसू मैं तो रहा ही नहीं इल्ला अशियतन औ ज़ुहाहा। जब ये उस क़यामत की हौलनाकियों को देखेगा इसको लगेगा कि ज़िंदगी में तो मैं एक शाम भी नहीं रहा, यानी कि एक आधा दिन भी मैं इस दुनिया में नहीं रहा था कि अब मेरे ऊपर ये आ गई। इसके बाद आज एक हम फाइनली लास्ट सूरत सूरह अबसा कर ट्राई अटैम्प्ट करते हैं, जो कि ऑर्डर के एतबार से कुरान पाक की 80th नंबर पे बनती है और नाजिल होने वाली है कुरान पाक की 24th सूरत है। इसमें ऑफकोर्स रुकू एक ही है और 42 आयात टोटल हैं। बिल्कुल फर्स्ट आयत में हमने देखा अबसा व तवल्ला, इसीलिए इस सूरत को अबसा कहा गया। अबसा का मीनिंग जो यानी कि टर्न करना, मुंह को अपने चेंज करना, डायरेक्शन को, रुख को, तो अबसा ये नबी अलैहिस्सलाम से खिताब हो रहा है कि यू हैव टर्न, यू चेंज योर रुख टू अदर साइड। हुआ ये था, एक ब्लाइंड साइड सहाबी थे अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु, वो आए तशरीफ़ नबी अलैहिस्सलाम के पास कुछ बात करने। तो उस वक्त कुरैश के सरदारों से कोई मुज़ाकरात चल रहे थे या कोई हाई लेवल डेलीगेशन आया हुआ था, उससे बातचीत चल रही थी नबी अलैहिस्सलाम की। लेकिन जब ये आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने ऑफकोर्स कहा ये तो अपने मेरे ज़ाहिर है भाई हैं, ये तो अभी मैं इनसे कुरैश से फारिग होकर इनसे बात कर लूँगा। लेकिन अल्लाह ने कहा कि नहीं, जो कुरैश हैं वो काफिर हैं, तो उसके मुकाबले में एक मुसलमान को ऐसे एम्बेरस भी नहीं होना चाहिए। इस वजह से आयत नाजिल की कि नहीं आपने इनसे क्यों टर्न भी क्यों किया, हो सकता था कि ये असल क्योंकि हिदायत लेने आए थे तो इनसे टर्न होना भी अल्लाह ने तंबी एक सॉर्ट ऑफ फरमाई नबी अलैहिस्सलाम को कि वो भी मुनासिब नहीं था। तो खैर इसके बारे में जब भी नबी अलैहिस्सलाम फिर हज़रत इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु को देखते तो उनके उनको वेलकम करने के लिए खड़े हो जाते कि ये वो हैं जिन्हें अल्लाह ने मुझे इनकी वजह से तंबीह फरमाई, और इनसे ख़ास तौर से कहते कोई काम है तो बताओ। और इनका बहुत हाई लेवल था, स्टेटस था कि इवन दो ही वॉज़ ब्लाइंड बट नबी अलैहिस्सलाम मेड हिम द वाली ऑफ मदीना, यानी कि द इंचार्ज ऑफ मदीना ट्वाइस व्हेन ही वाज ही लेफ्ट फॉर सम एक्सकवेशन या जो भी उनके थे कभी ग़ज़वे खैबर के टाइम पे ऐसे, तो इन्हें मदीना का वाली यानी कि इंचार्ज बना के या अमीर बना के अपना या खलीफा बना के जाया जाता था, दो मरतबा इन्हें बनाया गया। आगे आयत नंबर 17 से 20 तक हम देखें तो अपनी जो असल भूल गए हैं लोग, ये सूरत जो इंसान जो नाशुक्रा है उसको बताती है कि वो अपनी रियलिटी भूल जाता है। कुतिल अल इंसान उमा अकफरा, ये झुटलाता है, ये अपनी रियलिटी को क्योंकि नाशुक्रा है और झुटलाता है उसका जिक्र आया। और आगे आयत नंबर 24 में हम फिर ख़ास तौर से देखें फल यंजुर अल इंसान इला तुआमी, क्या ये देखता नहीं है हमने इंसान को ये खाने के लिए क्या बनाया। अन्ना सबबनल मा सब्बा सुम्मा शक्कनल अर्ज़ शक्का फअंबतना फिया हब्बा व अनबा व कस्बा व ज़ैतून व नखला व हदाइका गुलबा। ख़ास तौर से इसमें एक गौर तलब बात ये इंसान को डराने के लिए कि तो ये क्यों मानता नहीं है, नाशुक्रा क्यों कुफर यानी कि इनकार करता है, जबकि सिर्फ एक निशानी अगर हम यहाँ देख लें, एक फूड इंजीनियर इन वन ऑफ द मेजर फूड ब्रांड्स ऑफ इन द वर्ल्ड, वन ऑफ वेरी मल्टी मिलियन बिलियन डॉलर कंपनी, उनके एक फूड इंस्पेक्टर या इंजीनियर बताते थे कि जो हमारा डाइट प्लान होता है इंसान का भी वो इस तरह से होता है कि सबसे ज़्यादा उसकी उसमें फाम बतना फिया हब्बा व आयना व कस्बा व ज़ैतून व नखला। इसमें ख़ास तौर से आयत नंबर 26, 7, 8 यहाँ पे हम देखें कि जो डाइट प्लान सबसे पहले अल्लाह ने हब्बा यानी कि उसका सब्ज़ी वगैरह का अनाज का इसका जिक्र किया, फिर अल्लाह ने फ्रूट्स का जिक्र किया वाइना बहु कस्बा और फ्रूट्स वगैरह अंगूर और ये चीज़ें, और फिर वह ज़ैतून व नखला, फिर खजूर और जैतून के वो डाइट प्लान में जो पिरामिड बनता है उसमें सबसे टॉप पे नोक यानी कि कम होता है डाइट प्लान में। तो एक ख़ास नुक्ता हमें गालबन सूरत से ये भी मिलता है, बहरहाल वल्ला आलम। लेकिन एंड का जो हाल हमें पता चलता है आयत नंबर 33 में फैज़ा जात सौख़, जब ये चीख आएगी यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अखी, फिर उस दिन एक आदमी अपने भाई से भागेगा व उम्मी ही व अबी, और अपने माँ को धक्का मारेगा, अपने बाप से जान छुड़ाएगा, साहिबत ही व बनी, अपने दोस्त से मुंह मोड़ के उसे पहचानेगा भी नहीं और अपने औलाद को छोड़ छाड़ के भागेगा। उस दिन लिकुल मिन यौमा इज़्ज़िन शानुही उगनी, ये सब हाल होगा लेकिन वजूह यौमा इज़्ज़िन मुसफ़िरा, जैसे कोई अबू बकर रज़ी अल्लाह अनु रज़ी अल्लाह ताला अनु, या ऐसे उमर और उस्मान और अली रज़ी अल्लाह अनु वाले जैसे लोग, वो उस दिन मुस्फिरा यानी कि रोशन चेहरों वाले होंगे, और ज़ाह का तुम मुस्तबशरा, वो बहुत हंस रहे होंगे और खुश रहे होंगे। वजूह ही यौमा इज़ अलैहा गबरा, और कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो बिल्कुल गबरा यानी कि झुलसे हुए होंगे, तरह को कतरा उलाएका हुमुल कफरतुल फजरा, और ये काफिर और फाजर लोग होंगे। यहाँ के हम ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह हमारा लास्ट सेशन हो, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।